नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे। इसका शीर्षक है गायत्री की पंचकोशी साधना। ये एक आध्यात्मिक प्रवचन है, तो हमारा इरादा है कि इसकी गहराई में जाएं और समझें कि इसे हम अपने जीवन में मतलब आत्म सुधार के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, और देखिए इस उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव एक बहुत बहुत साफ बात कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता जो है वो सिर्फ बाहर की पूजा पाठ या देवी देवताओं को मानने तक ही नहीं है।
अच्छा।
हाँ, असल जोर जो है वो आत्म अनुशासन पर है और हमारे अंदर जो पांच परतें हैं ना जिन्हें पंचकोश कहते हैं उनको जगाने पर है। और मजे की बात यह है कि गुरुदेव इन्हीं पंचकोशों को ही असली देवता मान रहे हैं जिनकी हमें साधना करनी है।
अरे वाह, ये तो काफी अलग नजरिया है। मतलब जो हम पारंपरिक रूप से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उससे हटकर अपने भीतर के इन देवताओं पर ध्यान देना। तो ये पंचकोश आखिर हैं क्या और इनकी साधना का क्या मतलब हुआ फिर?
पूज्य गुरुदेव ना एक तुलना करते हैं, वो कहते हैं कि देखो जो बाहरी देवी देवता हैं उनके होने ना होने पर उनके असर पर मतभेद हो सकता है।
हाँ,
कोई मानेगा कोई शायद ना माने।
हाँ ये तो है,
पर हमारे अंदर ये जो पांच कोश रूपी शक्तियां हैं गुरुदेव कहते हैं ये तो 100% सच है। इनकी साधना करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अपने अनुभव की बात है।
अच्छा, और शायद इसीलिए पूज्य गुरुदेव वो क्या कहते हैं सिर्फ जबान से मंत्र बोल देने या हाथों से कुछ कर्मकांड कर लेने को पूरा नहीं मानते। वो कहते हैं ना कि अध्यात्म सस्ता नहीं महंगा सौदा है। मतलब इसमें सच में मेहनत लगती है, अनुशासन लगता है, बदलाव लाना पड़ता है, सिर्फ शब्दों की हेरा फेरी काफी नहीं है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यहीं से बात शुरू होती है पहले कोश की जिसे कहते हैं अन्नमय कोश।
अन्नमय कोश,
हाँ, ये हमारा स्थूल शरीर है मतलब फिजिकल बॉडी। इसकी साधना का सीधा मतलब है इसे साधना अनुशासन में रखना। इसके यूं समझिए चार मुख्य हिस्से हैं। पहला है संयम, खासकर जीभ पर कंट्रोल, मतलब क्या खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं, आहार शुद्धि।
हाँ, गुरुदेव स्वास्थ्य के लिए इसे बहुत जरूरी बताते हैं, गांधी जी का उदाहरण भी देते हैं शायद।
जी हाँ। दूसरा है श्रम, मतलब ईमानदारी से मेहनत करना, शारीरिक काम करना, आलस छोड़ना। तीसरा है मनोयोग, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगाकर करें, एकाग्रता से, बेमन से किया तो बेकार है। और चौथा है ईमानदारी, अपने काम के प्रति, अपनी कमाई के प्रति सच्चाई।
ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ शरीर तक ही नहीं है, मतलब संयम, श्रम, मनोयोग, ईमानदारी, ये चारों मिलकर। पूज्य गुरुदेव ने वो उदाहरण दिया था ना उस मोची बच्चे का जो सड़क किनारे इतनी लगन और ईमानदारी से काम करता था कि ग्राहक खिंचे चले आते थे।
हाँ, और वही बच्चा आगे चलकर बाटा जैसी बड़ी कंपनी का संस्थापक बना। ये अन्नमय कोश की साधना का ही तो फल है।
और वो पिसनहारी नारी वाला किस्सा भी जिसने मेहनत करके पैसे बचाए और कुआं खुदवाया
और उसका पानी मीठा निकला,
ये सब अन्नमय कोश को साधने के मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है।
शरीर सद गया तो फिर बात आती है ऊर्जा की। दूसरा कोश है प्राणमय कोश।
प्राणमय कोश, ये क्या है?
जीवन शक्ति।
हाँ
बिल्कुल, हमारी वाइटल एनर्जी, जीवन ऊर्जा, हिम्मत, साहस, संकल्प शक्ति, ये सब प्राणमय कोश का हिस्सा है। इसकी साधना का मतलब है अच्छे कामों के लिए हिम्मत जुटाना, दृढ़ निश्चय करना, अपने उसूलों पर टिके रहना। गुरुदेव एक बात पर बहुत जोर देते हैं, पात्रता, मतलब कोई भी ऊंची चीज पाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए पहले खुद को उसके लायक बनाना पड़ता है।
अच्छा।
और ये पात्रता बिना साहस और संकल्प के, मतलब प्राणमय कोश को जगाए बिना नहीं आती।
तो पहले शरीर साधा अन्नमय कोश, फिर ऊर्जा और संकल्प को साधा प्राणमय कोश, इसके बाद मन, तीसरा कोश मनोमय कोश।
जी, मनोमय कोश यानी हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। इसकी साधना है जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना,
सुख दुख, सफलता असफलता,
इन सब में। हाँ बिल्कुल, इन सब द्वंद्वों में मन को स्थिर रखना। इसमें दो चीजें खास हैं, एक विवेक मतलब सही गलत की पहचान, और दूसरा कर्तृत्व मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझना और निभाना।
इसके लिए भी कोई उदाहरण दिया है गुरुदेव ने?
हाँ, सावित्री जी का अद्भुत उदाहरण है, कैसे उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और मानसिक बल से, जो कि मनोमय कोश की ही शक्ति है, यमराज तक को अपना निर्णय बदलने पर विवश कर दिया था।
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये तीन हो गए, पर साधना तो पंचकोशी है, बाकी दो कोश कौन से हैं?
बिल्कुल सही सवाल। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश।
विज्ञानमय, ये बुद्धि से जुड़ा है?
हाँ, ये बुद्धि, ज्ञान और विवेक का स्तर है। देखिए, इसकी साधना का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझना, विश्लेषण करना और उसके आधार पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। ये गहरी समझ, इनसाइट का क्षेत्र है।
अच्छा, और आठवां और आखिरी?
पांचवा और सबसे सूक्ष्म है आनंदमय कोश। ये हमारे होने का वो स्तर है जहां सिर्फ शुद्ध आनंद है, शांति है, आत्मा का अनुभव है। इसकी साधना हमें दुनिया के सुख दुख से ऊपर उठाकर उस सहज स्वाभाविक खुशी से जोड़ती है जो हमारा असली स्वभाव है। अहंकार से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार, वो सब इसी कोश से जुड़ा है।
तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव का संदेश ये हुआ कि बाहर जाकर देवी देवताओं से मिन्नतें करने के बजाय हमें अपने अंदर ही काम करना है, इन पांचों स्तरों पर, शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि और फिर वो आनंद, इनको साधना है, इनको विकसित करना है।
एकदम सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो गायत्री की पंचकोशी साधना असल में खुद को गढ़ने की, अपने पूरे व्यक्तित्व को परत दर परत निखारने की एक वैज्ञानिक विधि है। संयम, श्रम, ईमानदारी, साहस, मानसिक संतुलन, विवेक और आखिर में वो सहज आनंद की खोज, यही इन पांच देवताओं की सच्ची पूजा है। पात्रता का विकास ही सब कुछ है।
तो हमने समझा कि ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं है, बल्कि जीने का एक अनुशासित, एक होलिस्टिक तरीका है जिससे व्यक्ति का पूरा रूपांतरण हो सकता है।
इसका सार यही है कि जबरदस्त शक्तियां, जिन्हें गुरुदेव ने देवता कहा, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। उन्हें पहचानना है और फिर इन पांच कोशों के माध्यम से एक सदैव जीवन के जरिए उन्हें जगाना है। इसी से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति होती है।
आज की इस बातचीत के बाद ये सोचने वाली बात जरूर है हम सबके लिए, हमारे अपने जीवन में इन पांच कोशों में से किस पर हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। हम अपने भीतर के इन देवताओं को और मजबूत और जागृत कैसे बना सकते हैं। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं।
ओम शांति।